This podcast is an HT Smartcast original. Podcasts for every mood.
क्या 8 साल की कन्या अम्मा हो सकती है? सनातन धर्म की यही सुंदरता है कि यहाँ 8 साल की कन्या भी सर्वशक्तिमान है। वो ना केवल समस्त विपदाओं, बाधाओं और नकारात्मकता से आपकी रक्षा कर सकती है, बल्कि आपको मन चाहा वरदान भी दे सकती है। तो चलिए, आज मैं आपको लेकर चलती हूँ तमिलनाडु के कांचीपुरम में, जो सनातन धर्म की 7 मोक्षदायिनी पुरियों में से एक है। यहीं पर स्थित है कामाक्षी देवी शक्तिपीठ, जहाँ देवी अपने कुमारी त्रिपुर सुंदरी रूप में स्थित हैं। किंतु भक्त उन्हें प्रेम से कामाक्षी अम्मा कहकर पुकारते हैं। कामाक्षी अर्थात सबसे सुंदर आँखों वाली, जिनके नेत्रों के दर्शन मात्र से ही भक्तों के भाग्य बदल जाते हैं, हर कष्ट दूर हो जाता है और हर मनोकामना पूर्ण हो जाती है।
नमस्ते, मैं हूँ निष्ठा सारस्वत और मैं आप सभी का HT Smartcast की ओरिजिनल पेशकश 51 शक्तिपीठ पॉडकास्ट में स्वागत करती हूँ। हिंदू धर्म के पुराणों के अनुसार जहाँ जहाँ माता सती के अंग, आभूषण तथा वस्त्र के हिस्से धरती माँ ने धारण किए, वहाँ वहाँ शक्ति पीठ बने। इस पॉडकास्ट के जरिए मैं आपको ले चलूंगी देवी के 51 शक्ति पीठ की यात्रा पर, जिसमें जानेंगे कि शक्ति पीठ कैसे बने, उनका महत्व क्या है, उसकी कहानी और वहाँ कैसे पहुँचे।
कामाक्षी 3 शब्दों की संधि से बना है, का, मा एवं अक्ष। का अर्थ है सरस्वती, मा का अर्थ है लक्ष्मी और अक्ष जिसका अर्थ है चक्षु अथवा आंखें। अर्थात ये वो देवी हैं जो सरस्वती एवं लक्ष्मी जिनके चक्षु हैं। कहते हैं देवी कामाक्षी अम्मा की एक आंख में लक्ष्मी और दूसरी में सरस्वती माँ का वास है। यहाँ की शक्ति हैं माँ देवगर्भा और भैरव यानी शिव को रुरु कहते हैं। यहाँ पर देवी सती के कौन से अंग का निपात हुआ, इसको लेकर 3 मान्यताएं हैं। कुछ लोगों का मानना है कि यहाँ देवी देह का कंकाल गिरा था, जबकि अन्य मतों के अनुसार यहाँ देवी देह पर पहना हुआ आभूषण उत्तियाना यानी कमरबंद, जो कि पेट पर धारण किया जाता है, गिरा था। और यहाँ के पुरोहितों का कहना है कि ये नाभि पीठ है जहाँ माँ की नाभि का निपात हुआ था। धर्म ग्रंथों में उल्लेख है जहाँ माता स्वयं बता रही है कि कांची तू कामाक्षी, मदुरई तू मीनाक्षी, दक्षिणे कन्याकुमारी मम शक्ति रूपेण भगवती। अर्थात कांची में कामाक्षी है, मदुरई में मीनाक्षी है, दक्षिण में कन्याकुमारी मेरी ही शक्ति रूपी देवी हैं। इस मंदिर का इतिहास बहुत पुराना और सुंदर है। सतयुग से माता यहाँ स्थापित है, किंतु कालांतर में समय समय पर अनेकों महान लोगों ने यहाँ तपस्या की, यज्ञ किए और इस मंदिर का निर्माण कराया। एक पौराणिक कथा के अनुसार भगवान शिव से विवाह की अभिलाषा लिए कामाक्षी अम्मा ने सुई की नोक के ऊपर एक पांव पर खड़े होकर तपस्या की थी। उनकी अभिलाषा पूर्ण हुई और फागुन मास के उत्तर नक्षत्र में भगवान शिव से उनका विवाह हुआ। आज भी प्रत्येक फागुन मास में यहाँ भगवान शिव एवं कामाक्षी का विवाह उत्सव मनाया जाता है। इंग्लिश कैलेंडर के अनुसार ये उत्सव लगभग फरवरी मार्च के महीने में पड़ता है। मान्यता है कि विवाह की अभिलाषा रखने वाले नवयुवकों एवं नवयुवतियों को इस उत्सव में अवश्य भाग लेना चाहिए। इस दिन देवी को नौका में बैठाकर घुमाया भी जाता है। यहाँ देवी कामाक्षी का सोने का एक चित्र भी था, जिसमें उन्हें तपस्या की मुद्रा में एक पांव पर खड़े होकर चित्रित किया गया था। इस चित्र को बंगारू कामाक्षी भी कहा जाता है। मंदिर पर आक्रमण की आशंका से इस चित्र को तंजावुर स्थानांतरित कर दिया था। ये चित्र अब भी तंजावुर में ही है। इस मंदिर का इतिहास बहुत ही गौरवपूर्ण है। श्रापित होने के पश्चात ऋषि दुर्वासा ने यहाँ तपस्या की थी। कामाक्षी को प्रसन्न कर उन्होंने श्राप से मुक्ति पाई। इसके बाद उन्होंने यहाँ सौभाग्य चिंतामणि कल्प की रचना की, जिसे दुर्वासा संहिता भी कहा जाता है। अपने इस ग्रंथ में उन्होंने कामाक्षी की उपासना की विस्तृत विधि निर्धारित की। आज भी यहाँ कामाक्षी की उपासना ठीक वैसे ही की जाती है जैसे उनके ग्रंथ सौभाग्य चिंतामणि में दर्शाया गया है। त्रेता युग में अयोध्या के राजा दशरथ महर्षि वशिष्ठ के कहने पर संतान प्राप्ति के लिए माँ कामाक्षी की पूजा करने आए थे। यहाँ के 24 खम्भों में से एक की पूजा के समय उन्हें माँ की आवाज सुनाई दी कि एक वर्ष के भीतर उन्हें संतान प्राप्ति होगी। इस खम्भे को संतान स्तंभ के तौर पर आज भी पूजा जाता है। तभी से लोगों में ये मान्यता उत्पन्न हो गई कि इस मंदिर में प्रार्थना करने पर निसंतान दंपत्ति को संतान प्राप्ति होती है। देवी कामाक्षी इक्ष्वाकु वंश की कुल देवी हैं। इस कथा का उल्लेख मार्कंडेय पुराण में किया गया है। कलयुग में इस मंदिर का पुनः निर्माण जगत गुरु शंकराचार्य जी ने ही करवाया था। कहते हैं कि देवी पहले यहाँ अपने रौद्र रूप में वास करती थी। उनके क्रोध की अग्नि ने गर्भगृह को अत्यंत उष्ण कर दिया था। तब आदि शंकराचार्य जी ने यहाँ श्री चक्रम की स्थापना की और माता का क्रोध शांत किया। उसके पश्चात देवी यहाँ करुणा रूप में बसती हैं। आदि शंकराचार्य जी ने इसी मंदिर में बैठकर सौंदर्य लहरी की रचना की थी। एक और कहानी के अनुसार एक समय एक गूंगे भक्त को इसी मंदिर में स्वर का वरदान प्राप्त हुआ था। भाव विभोर होकर उस गूंगे भक्त ने 500 स्त्रोतों की रचना की, जिसे मुख पंचशती के नाम से जाना जाता है। इस स्थान की महिमा अनंत है। शायद ही भारतीय इतिहास के महान नायकों में कोई ऐसा होगा जो माता कामाक्षी की शरण में ना आया हो। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई से लगभग 75 किलोमीटर दूर कांचीपुरम में शिव कांची में स्थित है कामाक्षी देवी शक्तिपीठ, जिसे कामाक्षी अम्मा मंदिर और नाभि पीठ के नाम से भी पुकारा जाता है। इस स्थान पर देवी सती के कंकाल या नाभि या पेट पर पहनने वाले आभूषण का निपात हुआ था। ये मंदिर एक बहुत ही भव्य मंदिर है, जो लगभग 5 एकड़ के विस्तार क्षेत्र में फैला हुआ है। कामाक्षी मंदिर को पल्लव राजाओं ने संभवतः 6वीं शताब्दी में बनवाया था। इन वर्षों में चोलों, विजयनगर साम्राज्य और नायकों सहित विभिन्न राजवंशों और शासकों ने मंदिर की वास्तुकला और विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया, क्योंकि मूल संरचनाएं या तो प्राकृतिक आपदा से नष्ट हो गई या फिर इतने समय तक खड़ी न रह सकी। ये मंदिर कांचीपुरम शहर के मध्य में स्थित है और श्रद्धालुओं की आस्था का एक बहुत बड़ा केंद्र है। इस मंदिर के कई हिस्सों को पुनर्निर्मित किया गया है। इस मंदिर के वैभव का अनुमान आप इस बात से लगा सकते हैं कि मंदिर का मुख्य गुंबद 46 किलो सोने से बना है, जबकि नवरात्रि व कई अन्य अवसरों पर जिस रथ पर माँ कामाक्षी सवार होती हैं, वो 20 किलो सोने से बनाया जाता है। हर साल मंदिर में भक्त 50 करोड़ रुपए का चढ़ावा चढ़ाते हैं। एक दिन में करीब 10,000 श्रद्धालु यहाँ दर्शनों के लिए आते हैं। कामाक्षी अम्मा शक्तिपीठ कांचीपुरम शहर के बिल्कुल मध्य में स्थित है, इसलिए इसे कांचीपुरम का हृदय भी कहा जाता है। मंदिर के बाहर ही बाजार है और बाहर से ही फूल और प्रसाद मिल जाते हैं। मंदिर को मूल रूप से श्री चक्र पर बनाया गया है, जो एक अत्यधिक महत्वपूर्ण रहस्यवादी यंत्र है, जहां माँ कामाक्षी, जो पार्वती माँ का रूप है, विद्यमान है। गर्भगृह मंदिर का केंद्र है। पारंपरिक द्रविड़ियन दक्षिण भारतीय शैली में बने इस मंदिर का प्रवेश द्वार अत्यंत ही भव्य है। प्रवेश द्वार का गोपुरम ही 5 मंजिला है। इस पर अनेक देवी देवताओं की मूर्तियां तराशी गई हैं। ये गोपुरम हल्के पीले रंग का है। अंदर प्रवेश करते ही एक तालाब है। मध्य में मुख्य गर्भगृह, मंदिर परिसर के चारों कोनों में से एक कोने पर कमरे बने हैं, तो दूसरे पर भोजनशाला, तीसरे पर हाथी स्टैंड और चौथे पर शिक्षण संस्थान बना हुआ है। मुख्य मंदिर के पास ही परिसर में वो स्थान है जहां राजा दशरथ ने यज्ञ किया था, और वो स्तंभ भी है जहां से आकाशवाणी हुई थी। भक्त बहुत ही श्रद्धा से इस स्तंभ की पूजा करते हैं और मन्नत मांगते हैं। आइए अब मुख्य गर्भगृह में चलते हैं। पहले श्रद्धालु 4 मीनारों वाले कक्ष में पहुंचते हैं। इसे पार करने के बाद लोग आंतरिक पराक्रम कक्ष में पहुंचते हैं। यहाँ से श्रृंखलाबद्ध सीढ़ियों की चढ़ाई करने के बाद अंततः मंदिर के गर्भगृह का द्वार, जिसे बिल्व द्वार कहा जाता है, इसमें प्रवेश करके कामाक्षी मंदिर के गर्भगृह में पहुँचते हैं। मुख्य गर्भगृह को गायत्री मंडप कहा जाता है। इस गर्भगृह की ऊर्जा अद्भुत है। सामने माँ कामाक्षी देवी अपने दिव्य स्वरूप में सोने के सिंहासन पर पद्मासन लगाकर ध्यान में बैठी हैं। माँ ने सुंदर साड़ी पहनी है। सोने चांदी और हीरे के आभूषण माता पर स्वयं को पाकर इतरा रहे हैं और खूब चमक रहे हैं। माँ की छवि इतनी सुंदर है कि हृदय और आंखें उनके दर्शनों से सहसा ही भर आती हैं। उनका आसन पंच ब्रह्मासन है। कामाक्षी अम्मा की चार भुजाएं हैं। उनके निचले करों में गन्ना एवं पंच पुष्पों का गुच्छा है। वहीं ऊपर दोनों हाथों में वे शस्त्र, पाश और अंकुश धारण किए हुए हैं। समीप ही एक तोता भी है, जिस पर सहसा लोगों की दृष्टि नहीं पड़ती। इनके साथ ही पासा और अंगुसा नामक दिव्य चक्रों को भुजाओं में रखा जाता है। देवी कामाक्षी के नेत्र इतने सुंदर हैं कि उन्हें कामाक्षी की संज्ञा दी गई है। वास्तव में कामाक्षी में मात्र कमनीयता ही नहीं है, बल्कि कुछ बीज अक्षरों का यांत्रिक महत्व भी है। यहाँ पर क कार ब्रह्मा का, अकार विष्णु का और म कार महेश्वर का प्रतीक है। इसीलिए कामाक्षी के तीन नेत्र तीन देवों के भी प्रतिरूप हैं। ऐसा भी माना जाता है कि सूर्य चंद्र उनके प्रधान नेत्र हैं, अग्नि उनके भाल पर चिन्मय ज्योति से प्रज्वलित तृतीय नेत्र है। कामाक्षी में एक और सामंजस्य भी है। का सरस्वती का माँ महालक्ष्मी का प्रतीक है। इस प्रकार कामाक्षी के नामों में सरस्वती तथा लक्ष्मी का युगल भाव समाहित है। कामाक्षी की प्रतिमा के दाईं ओर विष्णु एवं स्वरूप लक्ष्मी की छवि है। यहाँ माँ लक्ष्मी की पूजा सिंदूर लगाकर की जाती है। आप माँ लक्ष्मी को कुमकुम अर्पित कर सकते हैं एवं प्रसाद के रूप में कुमकुम आप अपने साथ घर भी ला सकते हैं। सौभाग्यवान भक्तों को कुमकुम के साथ देवी की चूड़ियाँ और साड़ी भी प्रसाद में मिल जाती है। गर्भगृह के भीतर चांदी से लिपटा एक स्तंभ है। इसी पर एक छिद्र है जो देवी की नाभि का प्रतिनिधित्व करता है। ऐसी मान्यता है कि यही भक्तों को संतान प्राप्ति का वर प्रदान करता है। गर्भगृह के भीतर भक्तों को विशेष पूजा अर्चना के समय ही जाने दिया जाता है। आइए अब आपको स्वयं शंकराचार्य जी के द्वारा स्थापित श्री चक्र के बारे में बताती हूँ। देवी की प्रतिमा के सम्मुख योनि की आकार की एक संरचना है, जिसके भीतर श्री चक्र बना हुआ है। इसी श्री चक्र की यहाँ पूजा की जाती है। शास्त्रों के अनुसार देवी के इस श्री चक्र की पूजा अर्चना की तांत्रिक विधि है। शास्त्री रामानंद के अनुसार इसे देवी के घर का ब्लूप्रिंट भी कहा जाता है। श्री चक्रम में नीचे की ओर मुंह वाले 5 त्रिकोण हैं और 4 ऊपर की ओर मुंह वाले त्रिकोण हैं। इसमें 44 कोने हैं। इसमें फूलों की पत्तियां बनी हैं और 9 स्तर हैं। बिंदु में कामाक्षी विराजमान है। इसे देवी का सूक्ष्म शरीर कहा जाता है। इसकी पूजा श्रद्धालुओं के सामने नहीं होती। नवरात्र, ब्रह्मोत्सव और पूर्णिमा को होने वाली नव आवरण पूजा में सिर्फ शास्त्री ही होते हैं। श्री चक्र के चारों ओर 8 वाग देवियां उपस्थित हैं। बताया जाता है कि श्री चक्र एक शिला के ऊपर उकेरा गया है। ये वही स्थान है जहां आदि शंकराचार्य ने देवी पर सौंदर्य लहरी की रचना की थी। गर्भगृह की 4 भित्तियों को 4 वेद एवं गायत्री मंडप के 24 स्तंभों को गायत्री छंद के 24 अक्षर माना जाता है। कामाक्षी का यह रूप 8 साल की कन्या का रूप है। अविवाहित पंडित माँ की मूर्ति को छू नहीं सकते। यहाँ केवल विश्वामित्र और भारद्वाज गोत्र के पंडितों को ही पूजा करने की आज्ञा है। इन्हीं के वंशज वर्षों से यहाँ पूजन करते आ रहे हैं। यहाँ पूजा महर्षि दुर्वासा के लिखे ग्रंथ सौभाग्य चिंतामणि के अनुसार ही होती है। मंदिर के मुख्य पुजारी बताते हैं कि माँ के पास 1,000 करोड़ रुपए से अधिक के बेशकीमती गहने हैं। श्रृंगार में इस्तेमाल होने वाली मालाएं भी केसर, बादाम, काजू, कमल, चमेली, ऑर्किड और गुलाब से बनाई जाती हैं। 15 से 20 किलो की ये मालाएं 5 लाख रुपए में तैयार होती हैं। माँ कामाक्षी का श्रृंगार जब सरस्वती रूप में किया जाता है तो उन्हें श्वेत फूलों से सजाया जाता है। हाथों में वीणा भी दी जाती है। वाद्य यंत्रों से माँ की स्तुति की जाती है। शुक्रवार यहाँ का प्रमुख दिन है। उस दिन माँ अपने चांदी के बने घोड़े के रथ पर बैठकर नगर में विहार करती हैं। प्रांगण में माँ शारदा मंदिर, अन्नपूर्णा माँ का मंदिर और रसोई भी है और भक्तों को सुबह शाम प्रसादम का भंडारा मिलता है। सुबह के समय अधिकतर पोंगल का प्रसाद होता है और संध्या समय में पूरा भोजन होता है। इस प्रसाद का अपना स्वाद और महत्व है। ये मंदिर प्रातः 5:30 बजे से दोपहर 12 बजे तक और शाम 4 बजे से रात्रि 9 बजे तक दर्शनों के लिए खुला रहता है। ब्रह्मोत्सव और नवरात्रि पर यहाँ विशाल मेले का आयोजन किया जाता है। मंदिर में साल भर विभिन्न त्योहार मनाए जाते हैं जो बड़ी संख्या में भक्तों को आकर्षित करते हैं। वार्षिक ब्रह्मोत्सव, नवरात्रि और आदि शंकराचार्य जयंती बड़े उत्साह के साथ मनाई जाती है। इन त्योहारों के दौरान मंदिर की खूबसूरती देखते ही बनती है और यहाँ पर विशेष अनुष्ठान किए जाते हैं और जुलूस निकाले जाते हैं। दीपावली यहाँ विशेष उत्साह के साथ मनाई जाती है। लोग दूर दूर से यहाँ दीपावली मनाने और माँ के दर्शन करने आते हैं। कहते हैं दीपावली पर माँ के दर्शन करने से लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। दीपावली उत्सव पर कामाक्षी की पालकी गली गली में परिक्रमा करती है। उनके दर्शनों के लिए लोग घर के बाहर खड़े रहते हैं। दीपावली पर इस स्थान पर रोशनी, शंखनाद, फूलों की महक, नाद स्वरम जैसे दक्षिण भारतीय साजों के स्वर के बीच मंत्रोच्चारण का माहौल देवलोक में होने का एहसास कराता है।
नाम नाम शास्त्र सहस्रम च ब्रूहि गार्ग्य महामते महालक्ष्म्याः महादेव्याः भुक्ति मुक्त्यर्थ सिद्धये। गार्ग्य उवाच सनत् कुमारमासीनं द्वादशादित्य सन्निभम्।
ये एपिसोड लिखते समय मेरे मन में एक भाव आया कि ये एक ऐसा स्थल है जहाँ माँ अपने सभी स्वरूपों में विद्यमान है। माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी, माँ पार्वती, माँ अन्नपूर्णा, माँ गायत्री और तपस्विनी कन्या रूपी माँ त्रिपुर सुंदरी, साथ ही भगवान ब्रह्मा, विष्णु और भगवान शिव भी यहाँ उपस्थित हैं। यहाँ रसोई भी है, विद्यालय भी, यज्ञशाला भी। मुझे ऐसा एहसास हुआ जैसे ये स्थल अपने आप में ब्रह्मांड को समेटे हुए है। कितनी अद्भुत शक्तियाँ यहाँ समाहित हैं। तो ऐसा क्या हो सकता है जो यहाँ आने पर भक्त को प्राप्त ना हो? रिद्धि, सिद्धि, बुद्धि, ऐश्वर्य, ज्ञान और मोक्ष सच्चे भक्त को यहाँ सहज ही प्राप्त है। माँ का अपने भक्तों के प्रति प्रेम अनंत है। माँ को कोटि कोटि प्रणाम। आइए अब जानते हैं कि यहाँ कैसे पहुँचे। कामाक्षी शक्तिपीठ का सबसे नजदीकी एयरपोर्ट चेन्नई है, जो यहाँ से लगभग 65 किलोमीटर की दूरी पर है। यदि आप ट्रेन से आ रहे हैं तो नजदीकी स्टेशन चेंगलपट्टू है। चेन्नई से यहाँ बस के जरिए भी आसानी से पहुँच सकते हैं। तो जल्दी से बैग पैक करिए। मन की शांति और मनोवांछित इच्छा पूर्ण करने के लिए चले आइए कामाक्षी अम्मा के पास। आज के लिए इतना ही। अगले एपिसोड में हम चलेंगे अमरकंटक, जहाँ देवी माँ के 2 शक्तिपीठ स्थापित हैं। हम दर्शन करेंगे काल माधव शक्तिपीठ और सोन देश शक्तिपीठ के, जहाँ देवी माँ के दाएं व बाएं नितंब का निपात हुआ था और यहीं से ही सोन नदी और नर्मदा नदी का उद्गम स्थल भी है। और साथ ही जानेंगे नर्मदा नदी के उल्टे बहने का रहस्य।
आगे की कहानी सुनने के लिए हमसे जुड़े रहिए। मैं हूँ निष्ठा सारस्वत और आप सुन रहे हैं 51 शक्तिपीठ। अगर आप कोई जानकारी या फीडबैक शेयर करना चाहते हैं तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरे सभी सोशल मीडिया हैंडल्स पर, निष्ठा सारस्वत ऑन फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर। साथ ही आप HT Smartcast को भी फॉलो कर सकते हैं उनके सभी सोशल हैंडल्स पर, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन, यूट्यूब। और ऐसे पॉडकास्ट सुनने के लिए लॉग इन करें htsmartcast.com पर।
इस पॉडकास्ट पर अपडेटेड रहने के लिए हमें फॉलो करें @htsmartcast। हम सारे मेजर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर मौजूद हैं। और ऐसे पॉडकास्ट सुनने के लिए लॉग ऑन टू www.htsmartcast.com।